आप सुन रहे हैं लाल पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह है भाग दो। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। पिछले एपिसोड में आपने सुना अभिजीत संध्या को आसमान में लाल रंग का चांद दिखाने के लिए उसे अपने घर की छत पर बुलाता है, लेकिन संध्या को चांद में कुछ अजीब नहीं दिखाई देता। अजीब था तो बस ये कि फोन पर अभिजीत की आवाज आनी बंद हो जाती है। संध्या के बार बार फोन करने पर भी जब अभिजीत फोन रिसीव नहीं करता तो संध्या गुस्से में छत से वापस नीचे चली जाती है। इधर अभिजीत के घर छत की फर्श पर उसका फोन पड़ा हुआ है, लेकिन अभिजीत वहां नहीं है और आसमान में हमेशा की तरह सफेद और चमकीला चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है। अब आगे सुबह के 9:30 का वक्त है। आज कुलदीप बहुत जल्दी पुलिस स्टेशन आ गया है। उसके जल्दी आने का कारण भी था, वो इस वक्त एक रहस्यमय गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख रहा है, क्योंकि अभिजीत का भाई अभिषेक अभिजीत के लापता हो जाने की रिपोर्ट लिखा रहा है। अभिषेक के मुताबिक अभिजीत रात करीब 11 बजे घर आया और उसके बाद अपने कमरे में चला गया। सुबह जल्दी उठने वाला अभिजीत जब 8 बजे तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो अभिषेक उसके कमरे में गया। अभिजीत ना तो अपने कमरे में था और ना ही घर में कहीं, लेकिन जब अभिषेक को छत पर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा खुला मिला तो उसने ऊपर जाकर देखा, जहां उसे अभिजीत का मोबाइल मिला जिसमें संध्या की कई मिस कॉल्स थीं। कुलदीप बीच में ही पूछता है, ये संध्या कौन है? वो अभिजीत की फ्रेंड है, दोनों कॉलेज टाइम से साथ ही हैं, मैंने उसी वक्त उसे कॉल कर दिया था। वो कुछ, अभिषेक बोलते बोलते बीच में ही रुक जाता है। कुलदीप उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है। वो आगे बोलना शुरू करता है, संध्या कह रही थी कि अभिजीत रात को अजीब बिहेव कर रहा था। अजीब बिहेव मतलब? कुलदीप ने जब अभिषेक से पूछा तो ऐसा लगा जैसे अभिषेक को जवाब नहीं सूझ रहा है। कुलदीप उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभिषेक अपनी बात आगे कहता है, वो बता रही थी कि अभिषेक ने उसे रात को 2 बजे कॉल किया और अपने घर की छत पर आने के लिए कहा। वो उसे आसमान में चांद देखने को कह रहा था। चांद? कुलदीप उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। अभिषेक अपनी बात पूरी करता है, हाँ चांद, संध्या ने तो यही बताया था, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, अभिजीत बिना बताए कभी इस तरह कहीं नहीं जाता, इसलिए मैं यहां रिपोर्ट लिखाने आ गया। कुलदीप ने आगे पूछा, ये संध्या कहां है अभी? वो पुलिस स्टेशन ही आ रही है। कुलदीप अभिषेक के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और यही बात अभिषेक को असहज बना रही थी। कुलदीप आगे पूछता है, ये संध्या और अभिजीत के बीच सब ठीक था ना? अभिषेक सहमति में सिर हिलाता है। कुलदीप आगे की कार्यवाही करे इससे पहले ही संध्या अपने 2-3 दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। संध्या काफी घबराई हुई है। कुलदीप उसे हिम्मत बंधाकर उससे पिछली रात की सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से पूछता है। संध्या उसे एक एक करके रात की सारी बात बताती है कि किस तरह अभिजीत उसे आसमान में लाल रंग का चांद दिखाई देने वाली बात कर रहा था और किस तरह उसने रात को 2 बजे संध्या को कॉल करके छत पर आने के लिए कहा था। पुलिस स्टेशन में मौजूद हर एक शख्स संध्या की बात को बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन उसकी कहानी पर कितने लोग यकीन कर रहे थे ये अंदाजा संध्या खुद भी लगा सकती थी। कुलदीप ने रात को घटी सारी बात सुनने के बाद कहा, क्या आपको लगता है ये कहानी यकीन करने लायक है? संध्या ने लगभग सफाई पेश करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने भी अभिजीत को यही कहा था कि ये लाल चांद जैसा कुछ नहीं होता, उसके दिमाग का वहम है, लेकिन वो तो बस यही कह जा रहा था कि आसमान में देखो, मुझ पर यकीन करो। कुलदीप ने आगे कहा, बट मिस संध्या, अभी स्टेशन में जितने लोग मौजूद हैं वो ही आपकी कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहे। संध्या ने चारों ओर मौजूद लोगों को देखा, पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप के अलावा वहां 2 पुलिस वाले, अभिजीत का भाई अभिषेक संध्या के साथ आए उसके दोस्त, इनमें से किसी के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें से कोई भी संध्या की बात पर यकीन कर पा रहा हो। ये माहौल देखकर संध्या की घबराहट बढ़ गई थी। वो बड़ी उम्मीद के साथ एक बार फिर से अभिजीत के भाई अभिषेक की तरफ देखती है, लेकिन वो भी उससे निगाहें चुरा लेता है। इंस्पेक्टर कुलदीप एक ओर उठकर चला जाता है और वहां रखी कुछ फाइलों को टटोलने लग जाता है। इधर कुलदीप का साथी इंस्पेक्टर आदित्य मोर्चा संभाल लेता है। इंस्पेक्टर आदित्य संध्या पर पहला सवाल दागता है। संध्या जी, आप अभिषेक को कब से जानती हैं? संध्या को एक बार तो समझ नहीं आता कि सवाल उससे पूछा जा रहा है। इंस्पेक्टर आदित्य के सवाल दोहराने पर वो जवाब देती है, यही कोई 5 साल, कॉलेज में हम दोनों साथ थे। जवाब देने के बाद संध्या अपने साथियों की तरफ देखती है, जैसे उसे उनकी सहमति की जरूरत हो। उनमें से एक जवाब देता है, हाँ, हमारा 4-5 दोस्तों का ग्रुप कॉलेज के बाद से रेगुलर कॉन्टेक्ट में था। इंस्पेक्टर आदित्य आगे पूछता है, पिछले 5 सालों में आप में से किसी ने भी, या अभिषेक जी आप तो अभिजीत के भाई हैं, मैं आपसे पूछता हूं, कभी अभिजीत ने ऐसा अजीब बिहेव किया है, ये लाल चांद वाली बात पहले कभी किसी के सामने की है? सभी लोग ना में सिर हिला देते हैं। संध्या सभी के चेहरों की तरफ देखती है। उसे लग रहा था कि ये सारी बातें उसके खिलाफ जा रही हैं। आदित्य उससे आगे पूछता है, संध्या जी, आप लोग इतनी रात को कर क्या रहे थे? संध्या हिचकिचाती है और जवाब नहीं दे पाती है। आदित्य सवाल को दूसरी तरह से पूछता है, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी रात को आप दोनों आखिर किस काम से बाहर गए थे? आप लोगों के बीच क्या क्या बातें हुई थी? संध्या जवाब देती है, एक्चुअली अभिजीत काफी दिनों से बाहर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी। कल अभिजीत ने जब ज्यादा इंसिस्ट किया तो हम लोग घूमने चले गए, लेकिन कल अभिजीत के साथ भी मैं ऑफिस के ईमेल्स का जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि आदित्य संध्या को उसके जवाबों में ही उलझाना चाह रहा था। उसने आगे पूछा, मतलब आपको लगा कि कल आपके बिजी होने के बाद भी कुलदीप जानबूझकर आपको बाहर लेकर गया? जरूर कुछ इंपॉर्टेंट रीजन रहा होगा। नहीं, एट सच कोई रीजन नहीं था, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो आप ऑफिस के ईमेल का जवाब दे रही थी, उसके बाद? संध्या हिचकिचाते हुए जवाब देती है, उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैंने बताया भी। आदित्य उसकी बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे देखने लग जाता है। संध्या उसकी इस हरकत को देखती है। उसे लग रहा है कि आदित्य उसे जानबूझकर एहसास कराना चाह रहा है कि उसकी कहानी पर कोई यकीन नहीं कर रहा। अब संध्या अपने आप को अपराधी सा महसूस कर रही थी। आदित्य उससे आगे कुछ पूछे इससे पहले ही कुलदीप वापस से वहां आता है और संध्या से पूछता है, तो संध्या, आपके मुताबिक रात कोई 2 बजे आपके पास अभिजीत का कॉल आया, आपने उससे बात की और फिर उसने जवाब देना बंद कर दिया, और फिर आपने उसे रात को कॉल किया जो उसने उठाया नहीं? जी। संध्या एकदम धीमी आवाज में कहती है। कुलदीप उसे पूछता है, आपका फोन देख सकता हूं? संध्या हड़बड़ा जाती है। कुलदीप आगे कहता है, आजकल के फोन्स में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग फीचर होता है, आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग होती है? यह सुनते ही संध्या के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो झट से जवाब देती है, हाँ, मेरे पास कल की कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कुलदीप आगे कहता है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो हम वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे। जी। संध्या अपने फोन में से कॉल रिकॉर्डिंग का फोल्डर निकालती है और रात के अभिजीत के कॉल की रिकॉर्डिंग प्ले करती है। पुलिस स्टेशन के उस कमरे में अभिजीत और संध्या के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग गूंजने लग जाती है। वहां मौजूद हर एक शख्स उनके बीच की बातचीत को बड़े गौर से सुन रहा है। अभिजीत की आवाज सुनकर हर किसी की निगाहें आश्चर्य से फैल जाती हैं। यह देखकर संध्या को थोड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वही सब बातें थीं जो संध्या बता रही थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कुलदीप संध्या का फोन लेकर उससे कॉल ड्यूरेशन, संध्या की गई कॉल का टाइम वगैरह डिटेल नोट करता है और उन लोगों के साथ पुलिस टीम को उनके घर भेज देता है और खुद इंस्पेक्टर आदित्य के साथ बाहर अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के पास आकर सिगरेट सुलगा लेता है। आदित्य उससे कहता है, ये लड़की ही संध्या ठीक कह रही थी। मुझे तो लग रहा है कि अभिजीत के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। कुलदीप सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहता है, ये धरती के केस तो सुलझ नहीं रहे हैं, चांद के केस और गले पड़ गए। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। तभी कुलदीप को रिपोर्टर भानु आता दिखाई देता है। भानु लोकल अखबार जिंदा खबरें का रिपोर्टर है। यह अखबार खबरों में नमक मिर्च मसाला लगाकर परोसने के लिए बदनाम है। फिलहाल यह अखबार गुमशुदा लोगों की खबरों को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए इंस्पेक्टर कुलदीप भानु को देखते ही अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना होने की तैयारी कर लेता है। लेकिन रिपोर्टर भानु भागकर उसके पास आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये कल के मिसिंग केस की इंफॉर्मेशन तो दे दीजिए। कुलदीप ने आदित्य की तरफ देखते हुए जवाब दिया, इंस्पेक्टर आदित्य आपको इस मैटर की पूरी जानकारी दे देंगे। ये कहकर कुलदीप रवाना हो जाता है। भानु उसे आवाज देता ही रह जाता है। कुलदीप को जाते देख आदित्य भी वहां से खिसकने लगता है, लेकिन भानु उसे रोक लेता है। अरे आदित्य साहब, आप कहां चल दिए? आखिर आप ही तो हम लोगों का एकमात्र सहारा हैं। आदित्य भानु की आवाज में छिपा तंज समझकर मन ही मन मुस्कुरा उठता है और वहीं रुक जाता है। इधर इंस्पेक्टर कुलदीप दिन भर अभिजीत के घर और उसकी गुमशुदगी से जुड़ी जगहों पर छानबीन करता है। वहीं पेंटर कृपा शंकर भट्टाचार्य की गुमशुदगी के मामले में भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे दिन की भागदौड़ के बाद भी वो खाली हाथ है। आखिरकार रात को थक हार कर बिस्तर पर लेटते ही वो नींद के आगोश में चला जाता है। लेकिन काम की थकान उस पर इस कदर हावी थी कि रात को सोते वक्त भी उसके दिमाग में बार बार कृपा शंकर भट्टाचार्य की वो अधबनी पेंटिंग, अभिजीत की कॉल रिकॉर्डिंग, संध्या की गवाही वगैरह बातें गूंजती रहती हैं। सुबह 7 बजे कुलदीप की नींद फोन की आवाज से खुलती है। कुलदीप फोन की स्क्रीन पर गौर करता है तो फोन पुलिस सुपरिंटेंडेंट का था। सुबह सुबह अपने SP साहब का कॉल देखकर कुलदीप चौंकता है और कॉल रिसीव करता है। जय हिंद सर। कुलदीप, हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर, ये क्या छपा है आज के न्यूज़पेपर में? SP साहब की कड़क आवाज सुनकर कुलदीप की नींद उड़न छू हो जाती है। वो अखबार के लिए तुरंत मेन गेट की तरफ भागता है। सॉरी सर, मैंने आज का अखबार पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है तो पढ़ो, और ये जो गंद फैला रखी है ना, इसे समेटो। अब तक कुलदीप आज के अखबार को सरसरी निगाह से देख चुका था, लेकिन उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसके लिए SP साहब उसे इतना सुनाएंगे। वैसे सर, कौन से अखबार में है खबर? अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि कौन से अखबार में है खबर। कुलदीप जवाब देता है, सॉरी सर, मैं देखता हूं। हां, और सुबह 10 बजे मुझे ऑफिस में आकर मिलना। फोन कटते ही कुलदीप झल्ला पड़ता है। वो समझ जाता है कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कौन से अखबार की खबर पर उसे डांट लगाई है। जरूर जिंदा खबरें अखबार में ही फिर से कुछ छपा होगा, लेकिन इस अखबार ने आज ऐसा क्या छाप दिया? इसी उत्सुकता में वो वहीं से सड़क के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर जाता है, जहां मौजूद लोग कौतूहल से किसी खबर पर चर्चा कर रहे हैं। कुलदीप को एक आदमी के हाथ में जिंदा खबरें अखबार दिखाई देता है। अखबार की हेडलाइन देखकर कुलदीप सिर पर हाथ रख लेता है। अखबार की हेडलाइन थी, लाल चांद देखने से लड़का हुआ गायब। आप सुन रहे थे कहानी लाल, भाग 2, पॉडकास्ट वो कहानियां, लेखन और आवाज दीपक मिर्तवाल। क्या है लाल चांद का राज? लाल चांद असलियत है या महज वहम? इंस्पेक्टर कुलदीप की छानबीन कहां तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए लाल, पॉडकास्ट वो कहानियां पर।